आरवी नीचे भागते हुए पहुंची तो राधे से टकराते टकराते बची। राधे आरवी से, आरवी भाभी, आप और अयांश बाबा मुझसे हर वक्त टकराते क्यों रहते हो? मैं तो देखकर चलता हूँ। आरवी हाँफते हुए, हम आपसे क्या एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं? एनीवे, सॉरी, वो भाग कर आई ऊपर से नीचे तो आप दिखे नहीं, बट डोंट वरी, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, गिरे नहीं हम दोनों। हंसते हुए, हाँ बिना, वैसे आप नीचे भागकर क्यों आई? चलकर आ जाते आराम से। पीछे अगर खूंखार जानवर पड़ा हो तो बचने के लिए भागना ही पड़ता है, आप नहीं समझोगे राधे भैया। राधे कुछ बोलता तभी अपने कमरे से हॉल में आते दिनकर जी ने फर्श पर अपनी छड़ी मारी। आरवी और राधे ने फट सी दिनकर जी की ओर देखा। दिनकर जी आरवी की ओर देखते, क्या कहा आपने मेरे पोते को? आरवी बतीसी दिखाते, आपके पोते को नहीं, तो उनको मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बात ही नहीं की। वो तो दादाजी, मेरे कमरे में एक कॉकरोच आ गया था तो उसे बोला, बहुत डर लगता है मुझे सच में। राधे हैरानी से, कॉकरोच? हाँ राधे भैया, बहुत बड़ा, बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं, हम पर झपटने वाला था पर हम भाग आए, बचा लिया बप्पा ने, हाथ जोड़ते हुए। दिनकर जी आरवी की ओर आते, तो निकलवा दे उस खूंखार जानवर को घर से। आरवी मुस्कुराते हुए, इंतजाम कर दिया है, खुद ही चला जाएगा दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए। राधे अपना सिर खुजाते, कैसा इंतजाम? आरवी, वो हम बोलकर आए हैं कि हम जब तक वापस आए कमरे में तब तक चले जाना, वरना सजाए मौत, चला जाएगा। ये सुन राधे और दिनकर जी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंस पड़े। आरवी भी उन दोनों के साथ हंस पड़ी। तभी दिनकर जी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते, आओ नाश्ता करते हैं। राधे, खाना लगाओ। जी मालिक, आइए आरवी भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रहा था, कल रात से आपने खाना नहीं खाया ना? राधे बोला, आप खाना लगाइए, मैं आती हूँ, आरवी ने मुस्कुराते हुए राधे से बोला, और राधे वहां से किचन की तरफ चला गया। तभी आरवी ने ऊपर की ओर देखा और खुश होते मन ही मन बोली, दूर रहना मुझसे। अब आप खुद ही मुझसे दूर रहेंगे और मुझे भी खुद से दूर भगाएंगे, यही तो चाहती थी मैं। वेल डन आरवी, वेल डन। आइए मिस्टर मेहरा नीचे, अभी तक ट्रेलर और मिडी देखा है आपने पिक्चर का, अभी एंड तो बाकी है पतिदेव, कम सून। हंसते हुए अयान शाइनी के सामने खड़ा टाई लगा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अयांश ने बेड की टेबल की ओर आकर फोन उठाया, उसे कान और कंधे के बीच रख वापस आईने के सामने आकर खड़ा होते बोला, हाँ विनित। आगे से विनित, कहाँ हो तुम? घर? ऑफिस के लिए निकले नहीं? हमें एक मीटिंग के लिए निकलना था ना, याद है ना, हम लेट हो जाएंगे, आगे से विनित बोला। ये सुनते ही अयांश को आरवी की हरकतें याद आ गईं, क्योंकि लेट की वजह भी तो वहीं थी। तभी अयांश फोन हाथ से पकड़ते बोला, नहीं होंगे लेट, अभी टाइम है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ, पर तुम लेट हो। कहा ना, नहीं हूँ लेट, और हूँ भी थोड़ा तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी हो जाता है टाइम ऊपर नीचे। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं ही कह रहा हूँ, और हाँ मीटिंग के लिए लेट हूँ तब कहना, मीटिंग में टाइम से पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। बाय द वे तुम कहाँ हो? ऑफिस? मैं भी अभी निकल रहा हूँ। तभी विनित बोला, मैं ऑफिस नहीं हूँ, पर अभी जा रहा था ऑफिस तो सोचा पूछ लूँ तुमसे, तुम आ गए क्या? कहीं मैं ही लेट तो नहीं हो गया? मेरी तो आदत है, पर मेरे बॉस की भी मेरी जैसी आदत लग रही है, पता नहीं था। शट अप विनित, वजह जान सकता हूँ लेट होने की? या शादी के बाद सुनाए सबकी जिंदगी बदल जाती है, कहीं तुम्हारी भी तो नहीं बदल गए? क्योंकि कल तक जो अयांश मेहरा घर से बाहर रहता था, आजकल वो घर पर ज्यादा रहने लगा है। अयांश मेहरा कल भी वक्त पर अपना काम करता था और आज भी वक्त पर ही अपना काम करता है, और हाँ वक्त और मेरा इंतजार करने वाले दोनों मेरे लिए रुक सकते हैं, और मैं कहीं भी रहूं, घर या ऑफिस दोनों ही मेरे हैं। अयांश ड्रेसिंग टेबल से अपनी घड़ी उठाते बोला, ये वजह थी लेट होने की? नहीं, सच था मेरा, और रही बात वजह की तो तुम ना ही जानो, पहले ये एक वजह जानकर तकलीफ हुई है तुम्हें, कहीं फिर तकलीफ हो? तकलीफ नहीं, खुशी हुई है मुझे अयांश। एनीवे, मैं ये बता रहा था तुम्हें कि मीटिंग 10 बजे नहीं 10:30 है, तरुण जी का अभी कॉल आया, क्लाइंट की फ्लाइट थोड़ा सा लेट है, और हम 9 बजे निकलेंगे तब भी वक्त पर पहुंच जाएंगे, नहीं होंगे लेट। अयांश अपने हाथ में पकड़ी घड़ी की ओर देखते, इट्स मीन 20 मिनट है अभी, 8:30 हुए हैं, ओके 9 बजे निकलते हैं। वैसे तुम कहाँ हो? दी से मिलने आया था, हॉस्पिटल के बाहर हूँ। मिले? सामने गए? नहीं, दूर से ही। रोज जा सकते हो तुम, मैंने डॉक्टर से बात कर ली, जब चाहो तब वहां जा सकते हो तुम। बताया डॉक्टर ने, और ये भी कहा कि जब सो रही हूँ दी तो पास से भी मिल सकता हूँ। डोंट वरी मिनित, जल्दी अच्छे से मिल पाओगे, वर्तिका ठीक हो जाए फिर छुपकर नहीं सामने से मिलना कोई नहीं रोकेगा, अभी रिस्क नहीं ले सकते हम, उसे कोई याद नहीं है, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूँ? ओके, मैं मिलता हूँ ऑफिस में, अगर बीवी से फुर्सत मिल जाए और वो जल्दी आने दे तो चले आना, लेट मत होना। इतना कह विनित ने फोन काट दिया। अयांश को गुस्सा आ गया, वो फोन फेंकने को हुआ कि उसने अपना हाथ रोक लिया और विनित को मैसेज किया, ऑफिस नहीं घर आओ, वैसे भी साथ चलना है हमें तो यहीं से चलेंगे, साथ में ब्रेकफास्ट भी कर लेना, और हाँ मुझे फुर्सत नहीं अपनी बीवी से, शादी जो कर ली मैंने, तो तुम खुद ही आकर अपनी आरवी भाभी से अपने बॉस को ले जाओ ताकि हम जल्दी पहुंच पाए, वरना मेरा क्या, मैं तो मीटिंग में भी लेट पहुंचूं। ये मैसेज सेंड कर अयांश ने अपना फोन बेड पर फेंक दिया और जूते उठाकर पहनने लगा। आजकल सब अपनी मनमानी करने लगे हैं। अयांश मेहरा इतनी भी ढील अच्छी नहीं, सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो इस देवर की इस भाभी के साथ या इस भाभी के उस देवर के साथ। उधर विनीत ने अयांश का मैसेज पढ़ा तो हल्का सा मुस्कुराकर फोन साइड वाली सीट पर फेंक दिया। भाभी, गर्दन झटकाते हुए, जैसा सोचा था वैसी होती ना तो बात कुछ और ही होती। एनीवे, चल विनीत, ऑफिस नहीं मेहरा सदन की तरफ गाड़ी घुमा। राधे डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। दिनकर जी भी वहीं चेयर पर बैठे थे। आरवी चेयर पकड़े अयांश की ओर देख रही थी, जो हॉल में इधर उधर चलते फोन पर लगा था। तभी विनीत आ गया। अयांश की नज़र विनीत पर पड़ी तो फोन काटकर अयांश ने फोन अपने कोट में रखा और विनीत की ओर आते बोला, आ गए तुम, ऑर्डर था, आना ही पड़ेगा ना। विनीत ने अयांश की ओर देखते जवाब दिया। तभी अयांश विनीत के कंधे पर हाथ रखते बोला, तुम ठीक हो? विनीत हाँ में सिर हिलाते हुए, अयांश वो दादू के लिए अपने लटके चेहरे को थोड़ा ठीक करोगे? इतना भी उदास होने की जरूरत नहीं है, वर्तिका जल्द ठीक हो जाएगी, ट्रीटमेंट चल रहा है ना, और वैसे भी तुम्हारे यूं उदास रहने से, टेंशन लेने से वो आज ही ठीक नहीं होने वाली है। विनीत अयांश की ओर देखते, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है ना? अयांश अपना कोट ठीक करते, मैं फीलिंग लेस हूँ। विनीत, सबसे बड़ा झूठ, तुम फीलिंग लेस नहीं, फीलिंग छुपाने में माहिर हो। एनीवे, मैं ठीक हूँ और डोंट वरी, दादू के सामने भी ठीक ही रहूंगा। आई मीन, तुमने उनको कुछ बताया नहीं होगा अभी तक दी की हालत के बारे में या उनकी ऐसी हालत करने के बारे में? अगर बताया होता तो इस वक्त दादू उसे यूं हंस हंस कर बात नहीं कर रहे होते। दिनकर जी और आरवी की ओर देखते,
अयांश विनीत की ओर देखते, हाँ नहीं बताया, उनकी हालत इन दिनों ठीक नहीं, पहले ही वो बहुत टेंशन ले चुके हैं इस लड़की को लेकर भी। मैं फिलहाल उनको कोई परेशानी और तकलीफ नहीं देना चाहता। एंड यू नो, वर्तिका से दादू कितना प्यार करते हैं, उसके जिंदा होने की बात से बेशक खुश होंगे, पर उसे उस हालत में देख इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, दादू को बाद में बताएंगे, अभी पता नहीं चलना चाहिए दादू को। ओके, विनीत हामी भरते, ओके, तुम तो वैसे भी छुपाने में माहिर हो, मैं भी एक्टिंग कर ही लूँगा, और वो जिसने ये सब किया है वो खुद तो बताने से रही, वरना उसकी साइड कौन लेगा। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि तभी वहां आरवी आ गई और दोनों के सामने हाथ हिलाते बोली, हाय पतिदेव एंड देवर जी, मुस्कुराते हुए। दोनों ने उसकी ओर देखा तो आरवी फिर बोली, कैसे हैं आप देवर जी? ये सुन विनीत ने अयांश की ओर देखा तो अयांश वहां से जाते हुए, पति पुराण छोड़ अब इसका देवर पुराण शुरू हो गया। अयांश के वहां से जाते ही विनीत वहां से जाने लगा तो आरवी अपनी बाहें आगे कर उसे रोकते हुए, इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं देवर जी। विनीत आरवी की बाहें नीचे करते, कहा था ना कल मुझसे दूर रहना, अयांश ने शादी की है तुमसे, इसलिए वो झेले तुम्हें शौक से और जो मर्जी करे तुम्हारे साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा ना तो तुम्हारे साथ कोई लेना देना है और ना ही रिश्ता। फिर मेरे रास्ते आई ना तुम तो मैं भूल जाऊंगा तुम अयांश की वाइफ हो, पूरा हिसाब से वक्त कर डालूंगा, क्योंकि जो तुमने किया है उसके बाद तो तुम माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। इतना कह विनीत साइड से निकलने लगा कि पीछे से आरवी बोली, लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए विनीत जी, कहीं फिर पछताना पड़े। चोट के घाव भर जाते हैं किसी न किसी दिन, पर शब्दों से किए प्रहार से हुए जख्म कभी भर नहीं सकते हैं, जानते हैं ना, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं जाते, इसलिए सोच समझ कर थोड़ा शब्दों को तोल कर बोलिए, जो आगे चलकर आपको भी गिल्टी फील ना करवाएं। ये सुन विनीत मुड़कर आरवी की ओर देखता है। तभी आरवी हंसते हुए आगे आई और विनीत का हाथ पकड़ अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले जाते बोली, आइए देवर जी, सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल के पास जाते ही आरवी ने विनीत का हाथ छोड़ दिया और अयांश की ओर आकर खड़ी हो गई। विनीत ने हैरानी से आरवी की ओर देखा, जो उसकी ओर देखते मुस्कुरा रही थी। तभी विनीत ने उस पर से अपनी नज़र हटाई और दिनकर जी को गुड मॉर्निंग बोला और उनकी पास वाली चेयर पर बैठ गया। राधे अयांश की ओर उसका कॉफ़ी मग लेकर आने लगा कि आरवी ने फट से उसके हाथ से कॉफ़ी मग ले लिया। राधे भैया, ये हम दे देते हैं अपने पति देव को, आप दादाजी और देवर जी को नाश्ता दीजिए। आरवी के ये कहते ही अयांश, दिनकर जी, विनीत, राधे हैरानी से आरवी की ओर देखने लगे कि तभी आरवी अयांश के आगे कॉफ़ी मग रखा, आपकी कॉफ़ी, मुस्कुराते हुए। अयांश का खाना प्लेट में डालते बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप सब, अपने पति को अपने हाथ से खाना दे रही हूँ, फर्ज बनता है हमारा अपने पति परमेश्वर की सेवा करने का। ये सुनते ही विनीत ने फट से अयांश की ओर देखा, जो अपना हाथ अपने चेहरे पर फेर रहा था। तभी आरवी से थोड़ा खाना डाइनिंग टेबल पर गिर गया तो राधे फट से बोला, हम कर देते हैं आरवी भाभी। राधे के आरवी भाभी कहते ही अयांश ने उसकी ओर घूरा तो राधे ने अपनी नजरें झुका ली और दिनकर जी की ओर आकर उनकी प्लेट लगाने लगा। तभी आरवी बोली, हम कर लेंगे राधे भैया, आप दादाजी को खाना दीजिए और विनीत जी को भी, इनके लिए हम है ना। अयांश की ओर देखते, अब से रोज हमें ही तो करना है ना, लीजिए आपका ब्रेकफास्ट, आरवी ने अयांश के सामने खाना डालकर प्लेट रखते हुए कहा। ये देख अयांश का जबड़ा गुस्से से कस गया और वो आरवी की ओर देखते अपने दांत पीसते बोला, क्या कर रही हो तुम? आरवी अयांश की बांह पर हाथ रखते हुए,
पत्नी धर्म निभा रही हूँ अपना, और क्या। आपको खाना दे रही हूँ, खाओ ना माई डियर हस्बैंड। मन ही मन, डेविल नॉट डियर। तभी अयांश ने अपनी बाह से आरवी का हाथ दूर फेंक दिया और एक पल खाना की प्लेट और कॉफी मग दोनों जमीन पर गिरा दिए, और दूसरे ही पल टेबल पर हाथ मारते चेयर से उठ गया और चिल्लाते हुए बोला, ड्रामा बंद करो, इनफ आरवी इनफ। दादाजी, आरवी भाभी, देवर, पति पत्नी, बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा, नाउ इनफ। आरवी मासूमियत से, कौन सा ड्रामा पति देव। ये सुन अयांश एक कदम अपना आरवी की तरफ गुस्से से बढ़ाने लगा कि तभी अपने कदमों की दिशा मोड़ वहां से बाहर की ओर बढ़ गया। विनित भी अयांश के पीछे, अयांश रुको, कहते भाग कर चला गया। दिनकर जी अपना सिर पकड़ लेते हैं और राधे जाकर जमीन पर गिरा खाना और टूटी प्लेट मक के टुकड़े उठाने लगा। तभी दिनकर जी आरवी की तरफ देख बोले, ये सब क्या है बेटा, ये जानते हुए भी कि अंशु को पसंद नहीं ये सब। राधे टुकड़े उठाते आरवी की ओर देखते, गुस्सा देखा ना आपने, आप सब जानते हुए भी खुद के लिए क्यों मुसीबत खड़ी करती है, खाना भी नहीं खाकर गए, गुस्सा कर चले गए अयांश बाबा। आरवी जो अभी भी दरवाजे की ओर देख रही थी, राधे भैया, आपके अंशु बाबा को गुस्सा आता कब नहीं, और आपके अंशु की पसंद का हो सब, ये भी तो जरूरी नहीं ना। इतना कह आरवी धम से पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ आंखें मूंद आहें भरने लगी। दिनकर जी आरवी से सवाल करते हुए, जो किया आपने जानबूझकर किया ये तो जानता हूँ, पर क्यों बताएंगी आप। आरवी अपना सिर पकड़े पकड़े ही दिनकर जी की ओर देखते बोली, वर्तिका जिंदा है और इस वक्त उसकी जो हालत है उसका कसूरवार मुझे ठहराया गया है, जबकि ये सच नहीं है, एक ही सांस में बोलते हुए। ये सुनते ही दिनकर जी का हाथ जो टेबल पर रखा था उन्होंने वो फिसलकर नीचे गिर गया, जो पास खड़ी हुई उनकी छड़ी को भी गिरा देता है, और राधे जो प्लेट के टुकड़े समेट रहा था उसके हाथ भी वहीं के वहीं रुक गए क्रमशः।